आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश आज के संक्षिप्त समाचार ऋषाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री का कहना है कि पिछले साल विफल हुए वॉइस टू पार्लियामेंट रेफरेंडम के बावजूद भी फेडरल सरकार ने राष्ट्रीय संधि पर अपना मत नहीं बदला है। गार्मा फेस्टिवल में आज दिए अपने संभाषण के बाद प्रधानमंत्री ने उन आरोपों का खंडन किया जहां ये कहा गया है कि हार के बाद सरकार ने इस संधि की ओर से मुंह फेर लिया है। ग्रीन्स ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उलुरु स्टेटमेंट फ्रॉम दी हार्ट का लगभग परित्याग कर दिया है। 2017 के उलुरु वक्तव्य में संवैधानिक रूप से वॉइस की मांग की गई है। इसी के साथ मैकराटा कमीशन की भी मांग की गई है जो संधि और सत्य कहन पर काम करेगी। श्री अल्बनीजी का कहना है कि संधि पर काम जारी है लेकिन ये सबके साथ आने और एक दूसरे की बात सुनने से ही मुमकिन हो सकेगा। वहीं नव नियुक्त गृह मंत्री टोनी बर्क का कहना है कि वे ऐसा तरीका खोज रहे हैं जिससे गाजा से ऑस्ट्रेलिया भागकर आए विजिटर वीजा पर शरणार्थी यहां लंबे समय तक रह सके। उन्होंने इस बात की पुष्टि तो की है कि सरकार आगे के कदम विचार रही है लेकिन कोई ठोस निर्णय फिलहाल नहीं लिए गए हैं। टेम्पररी वीजा 3 से 12 महीने तक के लिए ही होते हैं जिनमें काम, पढ़ाई या हेल्थ केयर की सहूलियत नहीं दी जाती। वहीं स्वतंत्र सेनेटर डेविड पोकॉक का कहना है कि गैम्बलिंग के विज्ञापनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित ना करना दिवंगत लेबर सांसद पीटर मर्फी की थाती के साथ धोखा होगा। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के हवाले से आई रिपोर्ट के अनुसार फेडरल सरकार ने इन विज्ञापनों को पूर्ण रूप से बाधित करने से इनकार कर दिया है। इसकी बजाय एक नया प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रति घंटे में 2 ही जुए से संबंधित विज्ञापन दिखाए जा सकेंगे और ये शर्त रात 10 बजे तक लागू रहेगी। इसी के साथ लाइव खेलों के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद भी इन विज्ञापनों को न चलाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। दूसरी ओर NDIS मंत्री बिल शॉर्टन ने नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS के अंतर्गत होने वाली फंडिंग पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार का कहना है कि उन्होंने मौजूदा दिशा निर्देश और प्रणाली के अनुसार एक लिस्ट तैयार की है। जब तक फेडरल और प्रादेशिक सरकारें नई लिस्ट पर एकमत ना हो जाएं। बिल शॉर्टन का कहना है कि NDIS समीक्षा के सुझावों के अनुसार ये नए सार्वजनिक सुझाव लचीली बजट व्यवस्था तैयार करने में सहायक रहेंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य गाजा में एक अस्पताल के अहाते में लगे टेंट पर हुई इजरायली बमबारी में कम से कम 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देर अल बलाह की मुख्य चिकित्सीय इकाई अल अक्सा मार्टियर्स अस्पताल में ये हमला हवाई रूप से किया गया। न्यूयॉर्क स्थित फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इजरायल अब तक डॉक्टरों, मरीजों, क्लिनिकों और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1000 से अधिक हमले कर चुका है। समूह का कहना है कि बीते 10 माह में इतने हमले किसी और संघर्ष में चिकित्सीय व्यवस्थाओं पर नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि इजरायल और पैलेस्टाइन के बीच जारी इस संघर्ष में गाजा की लगभग 90% जनसंख्या विस्थापित हो चुकी है। और अंत में खबरें भारत से। भारत के हिमाचल प्रदेश के मंडी में राजबन गांव से एक शव बरामद होने के साथ ही 3 जिलों में बादल फटने से आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि बचाव दल करीब 45 लापता लोगों की तलाश कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 11 वर्षीय एक बच्ची का शव एक बड़े पत्थर के नीचे मिला। हिमाचल प्रदेश के 3 जिले शिमला, कुल्लू और मंडी में बादल फटने के बाद लापता हुए करीब 45 लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान शनिवार को फिर शुरू हो गया था लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। अधिकारियों ने सूचित किया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और राज्य आपदा मोचन बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, पुलिस और होमगार्ड की टीम कुल मिलाकर 410 बचाव कर्मियों की ड्रोन से मदद कर रहे हैं और खोज अभियान में शामिल हैं। बुधवार रात इन 3 जिलों में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद अब तक 9 लोग मारे जा चुके हैं जबकि हालात काबू में करने की कोशिश जारी है। इसी के साथ 4 अगस्त 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वृशाली को इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।